अनिवार्य ओपनिंग नरेशन एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथसार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
ग्रंथसार में सभी का स्वागत है। आज हम 20वीं सदी के एक बहुत ही खास उपन्यास पर चर्चा करने जा रहे हैं। एक ऐसा उपन्यास जिसने साहित्य जगत पर और खास तौर पर जो ये उत्तर औपनिवेशिक लेखन है उस पर एक गहरी छाप छोड़ी है। हम बात कर रहे हैं वी.एस. नायपॉल के मशहूर उपन्यास ए हाउस फॉर मिस्टर बिस्वास की।
हाँ, और इसके लेखक सर विद्याधर सूरज प्रसाद नायपॉल, वो अपने आप में एक बहुत दिलचस्प शख्सियत है। त्रिनिदाद में जन्मे भारतीय मूल के, फिर बाद में ब्रिटिश नागरिक बने और 2001 में उन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी मिला है। उनकी कलम अक्सर मतलब पहचान की तलाश, संस्कृतियों के टकराव और उपनिवेशवाद की छाया में जी रहे किरदारों की कहानियाँ भुनती है।
आपने बिल्कुल सही कहा। और अ हाउस फॉर मिस्टर बिस्वास जो 1961 में आया था, वो कई मायनों में नायपॉल की पहचान बन गया। ये सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, ये तो मतलब 20वीं सदी की शुरुआत में त्रिनिदाद में जो भारतीय कैरेबियन समुदाय था उनके जीवन, उनकी उम्मीदों, उनके संघर्षों का एक तरह से आईना है ये। उस दौर की कहानी है ये जब उपनिवेशवाद की पकड़ ढीली पड़ रही थी और एक नया समाज बन रहा था। और दिलचस्प बात यह भी है कि इसमें नायपॉल के अपने पिता के जीवन की भी झलक दिखती है ना?
बिल्कुल। तो आज इस चर्चा में हम मिस्टर बिस्वास के सफर को समझने की कोशिश करेंगे। उनकी कहानी क्या है, उनके जीवन के मुख्य पड़ाव कौन से हैं, और सबसे बढ़कर उनके संघर्ष का मतलब क्या है। क्योंकि जैसा कि उपन्यास का शीर्षक ही बताता है, ये घर की तलाश सिर्फ एक मकान की तलाश नहीं है, ये कहीं कहीं ज्यादा गहरी चीज है।
तो फिर शुरुआत करते हैं। उपन्यास का आरंभ थोड़ा अलग है ना? कहानी एकदम अंत के पास से शुरू होती है।
हाँ बिल्कुल। उपन्यास खुलता है और हम पाते हैं 46 साल के मोहन बिस्वास को। वो अपने खरीदे हुए घर में है मगर मृत्यु के करीब है। और ये घर भी कोई कोई सपनों का महल नहीं है। इसमें खामियां हैं, सीढ़ी अधूरी है, कर्ज का बोझ है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये उसका अपना घर है। यहीं से एक तरह की विडंबना, जिसे अंग्रेजी में आयरनी कहते हैं, वो सामने आती है। मतलब जो चीज जीवन भर की कमाई है वो भी अधूरी है, लेकिन वही अधूरापन ही उसकी जीत है ना। इस शुरुआती झलक से ही लेखक हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर इस घर तक पहुंचने का सफर कैसा रहा होगा।
और फिर कहानी हमें खींचकर अतीत में ले जाती है, मिस्टर बिस्वास के जन्म तक, ग्रामीण त्रिनिदाद का माहौल, और जन्म से ही मानो उनके माथे पर दुर्भाग्य लिख दिया गया हो।
हाँ, उनका जन्म ही अशुभ संकेतों के साथ होता है। हाथ में एक अतिरिक्त उंगली है जिसे देखकर पंडित भविष्यवाणी कर देते हैं कि ये बच्चा परिवार के लिए ठीक नहीं है, यहाँ तक कि अपने पिता की मौत का कारण भी बन सकता है। और फिर किस्मत का खेल देखिए, कुछ वैसा ही घट जाता है। बचपन में ही अनजाने में मिस्टर बिस्वास की वजह से उनके पिता रघु की डूबने से मौत हो जाती है।
उफ़, इस हादसे का असर तो जाहिर है बहुत गहरा होता होगा। परिवार बिखर जाता है, माँ बिपती बेसहारा हो जाती हैं, भाई बहन अलग अलग रिश्तेदारों के पास पलने चले जाते हैं। मिस्टर बिस्वास का शुरुआती जीवन मतलब गरीबी, अपमान और एक तरह की बेगानगी में बीतता है। वो हमेशा दूसरों पर निर्भर महसूस करते हैं, एक जड़हीन पौधे की तरह। लेकिन इसी मुश्किल दौर में किताबों से उनका रिश्ता बनता है और साइन पेंटिंग का हुनर भी थोड़ा बहुत उभरता है। ये शायद उनके अंदर पनप रही एक अलग पहचान की पहली किरणें थी।
और यहीं से उपन्यास का केंद्रीय धागा वो पकड़ में आने लगता है। मिस्टर बिस्वास का अपनी पहचान, अपनी स्वतंत्रता और अपने सम्मान के लिए संघर्ष, ये संघर्ष उनके पूरे जीवन का सार है। और इसका सबसे बड़ा प्रतीक है एक अपना घर।
और इस संघर्ष में सबसे बड़ी चुनौती बनकर कौन सामने आता है?
वो तुलसी परिवार।
तुलसी परिवार, एक ऐसी शादी जो मतलब
बिल्कुल जो लगभग इत्तेफाक से हो जाती है। और मिस्टर बिस्वास खुद को तुलसी परिवार के विशाल शोरगुल वाले हनुमान हाउस में पाते हैं।
हनुमान हाउस,
अरे हाँ, वो सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि एक पूरी दुनिया है। त्रिनिदाद में भारतीय संयुक्त परिवार का एक रूप, बहुत बड़ा, हमेशा चहल पहल, मगर जहाँ किसी की अपनी निजी जिंदगी या सोच के लिए कोई जगह नहीं। सब कुछ सामूहिक है, परंपराओं का बोलबाला है, लेकिन व्यक्ति का दम घुटता है। मिस्टर बिस्वास जैसे स्वतंत्र विचारों वाले इंसान के लिए तो ये एक पिंजरे जैसा था।
सही कहा। और इस पिंजरे की चाबी किसके हाथ में है? तुलसी परिवार की मुखिया मिसेस तुलसी, यानी माई। और उनके मैनेजर सेठ। ये दोनों उस व्यवस्था और नियंत्रण के प्रतीक हैं जो परंपरा और परिवार के नाम पर व्यक्तिगत इच्छाओं को दबा देते हैं। शायद उनके नजरिए से देखें तो वो परिवार को ज़ुसामनहल्टन मतलब एकजुट रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन विश्वास के लिए ये घुटन है।
बिल्कुल, इसीलिए विश्वास के लिए घर का मतलब सिर्फ छत नहीं रह जाता, वो तुलसी परिवार के दबदबे से आज़ादी का ऐलान है, दुनिया के थपेड़ों से बचने की पनाहगाह है, अपने वजूद का सबूत है।
ये उनके अंदर की आवाज़ है जो कहती है, मैं हूँ, मेरा अपना अस्तित्व है।
तो ये है नायक मोहन बिस्वास, लेकिन वो कोई पारंपरिक हीरो नहीं है, है ना?
हाँ।
उनमें कमजोरियां भी हैं, गुस्सा भी है, निराशा भी है। बिल्कुल, शारीरिक रूप से दुबले पतले, चिंता में डूबे रहने वाले, झट से गुस्सा हो जाने वाले, कई बार तो हताश हो जाने वाले, उन्हें एंटी हीरो कहा जा सकता है। मतलब ऐसा नायक जिसमें पारंपरिक नायकों वाले गुण ना हो, बल्कि मानवीय कमजोरियां ज्यादा हों, लेकिन उनके अंदर गजब की जिजीविषा है, जीने की इच्छा और आज़ादी की एक ऐसी प्यास जो कभी बुझती नहीं। उनका दिमाग तेज है और वो झुकने को तैयार नहीं।
तो क्या चीज उन्हें चलाती है, क्या चीज उन्हें बार बार गिरने के बाद भी उठने की हिम्मत देती है?
मेरे ख्याल से सबसे बड़ी वजह है निर्भरता का अपमान। उन्हें दूसरों के टुकड़ों पर पलना गवारा नहीं। उन्हें डर है कि तुलसी परिवार की भीड़ में उनकी अपनी पहचान वो मिट जाएगी, और सबसे ऊपर एक इंसान के तौर पर सम्मान पाने की गहरी इच्छा। हनुमान हाउस में उनके शुरुआती दिन इसी कश्मकश में बीतते हैं। वो सीधे लड़ाई नहीं करते, लेकिन अपने तंज से, छोटी छोटी नाफरमानियों से लगातार उस व्यवस्था को चुनौती देते रहते हैं, और जल्द ही उन पर झगड़ालू या मुसीबत का ठप्पा लग जाता है।
वो इस माहौल से निकलने की कोशिशें भी करते हैं, लेकिन शुरुआती प्रयास तो नाकाम रहते हैं। उन्हें दूर दराज के गांव द चेज में दुकान चलाने भेजा जाता है, वो असफल होती है। फिर तुलसी परिवार के ही चीनी बागान ग्रीनवेल में मजदूरी करनी पड़ती है।
हाँ, जहाँ जर्जर बैरकों में रहते हुए वो लगभग टूट जाते हैं। ये शायद उनकी जिंदगी का सबसे अंधकारमय दौर था, जब उन्हें लगता है कि उनका कोई अस्तित्व ही नहीं बचा।
लेकिन इसी अंधेरे में कुछ रिश्ते भी पनपते हैं, बदलते हैं। उनकी पत्नी क्षमा का किरदार, वो बहुत दिलचस्प है। वो अपने मायके और पति के बीच फंसी हुई हैं, लेकिन धीरे धीरे तमाम झगड़ों और मुश्किलों के बावजूद उनकी वफादारी विश्वास की तरफ झुकने लगती है। उनके बीच एक खामोश सा मजबूत रिश्ता बनता है। क्षमा का ये बदलाव कहानी को एक मानवीय गहराई देता है।
एक होनहार संवेदनशील लड़का जो अपने पिता के संघर्षों का मूक गवाह है। कई लोग मानते हैं कि आनंद में खुद लेखक नायपॉल की छवि दिखती है। उसे विरासत में पिता की बौद्धिक जिज्ञासा और कुछ हद तक विद्रोही तेवर मिलते हैं, लेकिन वो ज्यादा शांत और अनुशासित है। मिस्टर बिस्वास अपनी अधूरी हसरतें आनंद में पूरी होती देखना चाहते हैं।
अच्छा।
हाँ, और आनंद एक तरह से उन्हें पूरा करता भी है। उसे इंग्लैंड जाकर पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप मिलती है। ये बिस्वास की आकांक्षाओं की जीत है, लेकिन साथ ही ये एक मीठा दर्द भी छोड़ जाती है कि बिस्वास खुद जिन ऊंचाइयों को छूना चाहते थे वहां तक नहीं पहुंच पाए। आनंद वो उड़ान भरता है जिसका सपना शायद बिस्वास ने अपने लिए देखा था।
कहानी में एक अहम मोड़ तब आता है जब बिस्वास को राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन के एक अखबार त्रिनिदाद सेंटिनल में नौकरी मिलती है। ये उनके लिए एक बड़ा बदलाव था।
हाँ, ये उनके जीवन में ताजी हवा के झोंके जैसा था। पत्रकारिता ने उन्हें एक आवाज दी, समाज में थोड़ी पहचान दी, और तुलसी परिवार के सीमित दायरे से बाहर निकलकर दुनिया देखने का मौका दिया।
वो द आइडलर नाम से कॉलम लिखते हैं जिसमें वो समाज पर कटाक्ष करते हैं और कुछ हद तक चर्चित भी हो जाते हैं। ये उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने में मददगार साबित होता है।
लेकिन घर बनाने का जुनून वो अब भी सवार है, और इस जुनून में वो जो कोशिशें करते हैं वो अक्सर हास्यास्पद भी हो जाती हैं, है ना? कभी साली से खरीदा घर जल जाता है, तो कभी कच्ची लकड़ी से बनाया ढांचा ऐसा झुकता है कि मोहल्ले भर में मजाक बन जाता है। ये हालात उनके खिलाफ हो, बार बार असफलता मिलती है, कर्जा बढ़ता है, निराशा घेर लेती है, लेकिन फिर वो हिम्मत जुटाकर उसी सपने के पीछे लग जाते हैं। इसे नायपॉल जिस तरह दिखाते हैं उसमें दुख भी है और व्यंग्यात्मक हंसी भी। यही उपन्यास की ट्रेजिकोमेडी है, यानी दुखद और हास्यपूर्ण स्थितियों का ऐसा मेल कि आप किरदार के दर्द को भी महसूस करें और उसकी नादानियों पर मुस्कुरा भी दें।
और आखिरकार ढलती उम्र में गिरती सेहत के साथ वो अपना आखिरी दांव खेलते हैं। पोर्ट ऑफ स्पेन की सिक्किम स्ट्रीट पर एक घर खरीदते हैं। लेकिन क्या ये एक साफ सुथरी जीत होती है?
नहीं, बिल्कुल नहीं। एक चालाक क्लर्क उन्हें बातों में फंसाकर महंगा सौदा करवा देता है। घर का निर्माण भी ठीक नहीं होता और उसका कर्ज वो उनकी कमर तोड़ देता है। तो ये जीत भी अधूरी है, दागदार है, लेकिन फिर भी ये एक जीत है। जिंदगी भर की लड़ाई के बाद अच्छा या बुरा, सही या गलत, उनके पास अब एक अपना घर है। प्रस्तावना में हम जिस घर को देखते हैं वो यही घर है।
इस पूरी यात्रा में कई गहरे विषय उभर कर आते हैं। सबसे बड़ा तो वो पहचान और आजादी का संघर्ष ही है जिसका प्रतीक घर बन जाता है।
जी।
फिर व्यक्ति और समाज के बीच का तनाव, अकेला विश्वास और उसके सामने पूरा तुलसी परिवार,
और व्यवस्था बनाम अव्यवस्था का द्वंद्व भी है। हनुमान हाउस की अपनी एक अव्यवस्थित व्यवस्था है जिसके खिलाफ विश्वास अपनी एक निजी व्यवस्थित दुनिया बनाना चाहता है। पृष्ठभूमि में उपनिवेशवाद का असर भी है। त्रिनिदाद जैसे समाज जो अपनी पुरानी जड़ों और नई अंग्रेजी संस्कृति के बीच खुद को ढूंढ रहे हैं। नायपॉल इसे आधा बना समाज कहते हैं।
पिता पुत्र का रिश्ता यानी पितृत्व और विरासत का सवाल भी अहम है, खासकर आनंद के संदर्भ में। विश्वास अपनी बौद्धिक विरासत आनंद को सौंपना चाहते हैं।
और हाँ, साहित्य और शिक्षा की ताकत भी दिखती है। किताबें और लिखना विश्वास के लिए महज शौक नहीं बल्कि सुकून और उम्मीद का जरिया है। और नायपॉल के लिखने की शैली भी वो कमाल की है। वो कहानी तीसरे पुरुष में सुनाते हैं, यानी वो करके, लेकिन कैमरा हमेशा मिस्टर बिस्वास के कंधे पर रहता है। हम दुनिया को उनकी नज़रों से देखते हैं, उनके एहसास महसूस करते हैं। इससे पाठक का बिस्वास से एक गहरा गहरा जुड़ाव बन जाता है।
और कहानी सीधी रेखा में नहीं चलती, शुरुआत अंत के करीब से होती है, फिर अतीत में जाती है। इसे गैर रेखीय संरचना कहते हैं। इसका असर ये होता है कि हमारा ध्यान इस पे नहीं रहता कि बिस्वास को घर मिला या नहीं, वो तो हमें शुरू में ही पता चल जाता है, बल्कि इस पर जाता है कि ये घर कैसे मिला, किस कीमत पर मिला।
हाँ बिल्कुल, प्रतीकवाद का भी भरपूर इस्तेमाल है। घर तो सबसे बड़ा प्रतीक है ही, लेकिन हनुमान हाउस, यहाँ तक कि बिस्वास की पुरानी खटारा कार भी किसी न किसी चीज का प्रतीक बन जाती है। और पंडित की वो शुरुआती भविष्यवाणी एक तरह से पूर्वाभास का काम करती है, मतलब आने वाली घटनाओं का संकेत देती है।
कुछ बातें या एहसास हैं जो पढ़ने के बाद भी जहन में रह जाते हैं, जैसे बिस्वास का वो डर कि कहीं वो तुलसी परिवार के बीच गुमनाम मौत न मर जाए अनावश्यक और बिना जगह के। ये दिखाता है कि अपनी पहचान और गरिमा उनके लिए कितनी कितनी जरूरी थी।
या हनुमान हाउस का वो माहौल जहाँ कुछ भी निजी नहीं, सब कुछ खुला हुआ है, ये उस घुटन को दिखाता है जिससे वो भागना चाहते थे। और ये कि पैसे न होते हुए भी घर का सपना उनके मन में कैसे एक जुनून बन जाता है, ये मानवीय इच्छाओं की ताकत को दिखाता है जो तर्क से परे होती हैं।
और अंत में वो पंक्ति जिसका भावार्थ है, लेकिन ये एक जीत थी कि वो जिया था, ये शायद सबसे मार्मिक है। तमाम हार, अपमान और निराशाओं के बावजूद उनका जीवित रहना, संघर्ष करते रहना ही अपने आप में एक जीत थी।
हाँ, इस उपन्यास को पढ़कर मन में कई तरह के भाव आते हैं, निराशा, दया, कभी हंसी और अंत में विश्वास के कभी हार न मानने वाले जज्बे के लिए एक सम्मान। यह हमें सिखाता है कि आम इंसानों की जिंदगी में भी महाकाव्य जैसे संघर्ष हो सकते हैं। और घर का मतलब सिर्फ चार दीवारें नहीं, वो हमारी पहचान, हमारी आत्मा का हिस्सा होता है।
सही बात है, ये सफलता और महत्वाकांक्षा को भी एक अलग नजरिए से देखने पर मजबूर करता है। शायद असली कामयाबी सिर्फ मंजिल पाना नहीं बल्कि उस मंजिल तक पहुंचने के सफर में अपना वजूद बचाए रखना है।
तो कुल मिलाकर ये कहानी हमें याद दिलाती है कि इंसान विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी गरिमा और अपनी जगह के लिए लड़ता रहता है।
और साथ ही ये व्यक्ति की आज़ादी और समाज के साथ जुड़े रहने की जरूरत के बीच उस मुश्किल संतुलन पर भी सोचने को विवश करती है जिससे हम आज भी कहीं ना कहीं जूझते हैं।
अनिवार्य समापन पंक्ति, ये संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।